आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। अल्बनीजी सरकार ने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पूर्ण युद्ध की आशंका के बीच तनाव कम करने और संवाद और कूटनीति को लागू करने की अपील की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर किए गए हमले को इस महीने की शुरुआत में इसराइल द्वारा अपने भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर किए गए आश्चर्यजनक हवाई हमले की एक बड़ी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने स्काई न्यूज से कहा कि सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संभावित खतरे को लेकर अमेरिका और इसराइल से सहमत है, लेकिन उसे डर है कि ये एक व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि उसे ईरान में किसी सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम का कोई सबूत या प्रमाण नहीं मिला है। वहीं न्यू साउथ वेल्स सरकार द्वारा टेफ में किए गए एक बड़े निवेश के तहत अब हजारों निर्माण क्षेत्र के छात्र मुफ्त में अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर सकेंगे। राज्य सरकार ने न्यू साउथ वेल्स भर में टेफ के लिए 3.4 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे ट्रेड पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा और उन्हें पढ़ाई पूरी कर रोजगार के अवसरों तक पहुंचाया जा सकेगा। ये फंडिंग ऐसे समय पर आई है जब ऑस्ट्रेलिया भर में निर्माण स्थलों को कौशल की कमी का सामना करना पड़ रहा है और आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। 40 मिलियन डॉलर के निवेश से 23,000 निर्माण श्रमिकों को अपनी अप्रेंटिसशिप मुफ्त में पूरी करने में मदद मिलेगी। वहीं 24 वर्षीय एक इंडिजिनस युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद उसके दादा ने प्रधानमंत्री को संबोधित कर एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें नॉर्दर्न टेरिटरी की न्याय व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए फेडरल सरकार से हस्तक्षेप की अपील की गई है। वरिष्ठ वालुपेरी नेता के पोते कुमनजय वाइट की मई में एलिस स्प्रिंग्स में एक सुपरमार्केट में 2 सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा जबरन हिरासत में लिए जाने के बाद मृत्यु हो गई थी। नेट जंपी जिनपा हार्ग्रेव्स ने पत्र में लिखा कि नॉर्दर्न टेरिटरी की न्याय व्यवस्था गंभीर संकट में है और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी से कहा कि आपकी सरकार को कैनबरा से नॉर्दर्न टेरिटरी पर पूरा अधिकार प्राप्त है, ये पागलपन अब रुकना चाहिए। ये पत्र ऐसे समय सामने आया है जब सिडनी और एलिस स्प्रिंग्स में श्री वाइट को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी की है, जिसे उन्होंने एक शानदार सफलता बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने और इसराइल के युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, ईरान अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये हमले ईरान की परमाणु हथियार विकसित करने की किसी भी क्षमता को नष्ट करने के लिए जरूरी थे और उन्होंने किसी भी जवाबी कार्यवाही के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान की परमाणु एजेंसी ने फोडो, इस्फहान और नतांज तीनों परमाणु स्थलों पर हमलों की पुष्टि की है, जबकि एक स्थानीय राजनेता का दावा है कि फोडो में मुख्य लक्ष्य को केवल सतही क्षति पहुंची है। इन हमलों पर ईरान कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये देखना अभी रहता है। उधर इसराइल का कहना है कि उसकी धरती पर ईरान की ओर से नई मिसाइलों की बौछार दागी गई है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी के फैसले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतिहास बदल दिया है। ये हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब नेतन्याहू, जो 1990 के दशक से ईरानी शासन और उसके परमाणु हथियार विकसित करने की संभावनाओं का विरोध करते आए हैं, ने इस महीने 13 जून को एक अप्रत्याशित इजरायली हमला शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि इसराइल के पास खुद के लगभग 90 परमाणु हथियार हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य कार्यवाही ने शांति के लिए एक नया रास्ता खोला है। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत में अब रेल यात्रा को लेकर सहूलियतें बढ़ाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी क्लास में वेटिंग टिकटों की संख्या उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं हो सकेगी। यानी अगर किसी क्लास में 100 सीटें हैं तो वेटिंग लिस्ट में सिर्फ 25 नाम ही शामिल होंगे। ये नियम स्लीपर, AC1, AC2, AC3, चेयर और एग्जीक्यूटिव क्लास में आम यात्रियों के लिए लागू होगा। हालांकि ये नियम तत्काल सीनियर सिटीजन, महिलाओं, दिव्यांगों, विदेशी पर्यटकों और सरकारी वारंट पर मिलने वाली टिकटों पर लागू नहीं होगा। रेलवे का कहना है कि ये कदम त्योहारों और छुट्टियों में होने वाली भारी भीड़ और टिकट दलालों की समस्या को कम करने के लिए उठाया गया है, ताकि स्टेशनों की सुरक्षा भी बनाई जा सके। इसी के साथ 22 जून 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।